मंत्री गणेश जोशी ने 16वीं बटालियन गढ़वाल राइफल्स के स्थापना दिवस पर कहा, सैनिक देश सेवा के बाद सामाजिक क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। प्रदेश भर में होली मिलन समारोह की धूम, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में होली मिलन समारोह में शिरकत की। पश्चिमी एशिया में भारतीय दूतावासों ने भारतीय नागरिकों से क्षेत्रीय स्थिति को देखते हुए जारी सलाहों का पालन करने का आग्रह किया और चारधाम यात्रा को लेकर हरिद्वार में परिवहन विभाग की ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और ट्रैवल कारोबारियों के साथ महत्वपूर्ण बैठक आयोजित। प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं जयवीर सिंह और अब समाचार विस्तार से। प्रदेश के सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने 16वीं बटालियन गढ़वाल राइफल्स के 46वें स्थापना दिवस कार्यक्रम में शिरकत की। कार्यक्रम के दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने वीरांगनाओं और वीर नारियों को सम्मानित किया। श्री जोशी ने कहा कि गढ़वाल राइफल्स वीरता, अनुशासन और देशभक्ति की मिसाल है तथा उत्तराखंड वीरों और राष्ट्रभक्तों की भूमि है। उन्होंने कहा कि देश की सेना में लगभग 17.5% सैनिक उत्तराखंड जैसे छोटे राज्य से आते हैं, जो प्रदेश के लिए गर्व की बात है। उन्होंने कहा कि सैनिक देश सेवा के बाद सामाजिक क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। उन्होंने दोहराया कि राज्य सरकार सैनिकों के सम्मान और कल्याण के लिए वचनबद्ध है। प्रदेश भर में होली मिलन समारोह आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में होली मिलन समारोह में शिरकत की। इससे पहले नगला तराई खटीमा में होली पर्व के अवसर पर मुख्यमंत्री होलियारों के साथ झूमते नजर आए। देहरादून में भी कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने होली मिलन कार्यक्रम आयोजित किया, जिसमें पहाड़ की संस्कृति और होलियारों ने रंगारंग कार्यक्रमों की प्रस्तुति दी। देहरादून में होली मिलन के कार्यक्रमों की धूम नजर आ रही है, जिसमें सांस्कृतिक रंगों से सजे आयोजनों में पारंपरिक लोक धुनों और होलियारों के साथ लोग झूमते नजर आ रहे हैं। पौड़ी जिले में जन जन की सरकार जन जन के द्वार कार्यक्रम के तहत विकासखंड पाबोक की न्याय पंचायत सेंजी में बहुउद्देश्य शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में विभिन्न विभागों ने संयुक्त रूप से जन समस्याओं का समाधान करते हुए पात्र लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ प्रदान किया। शिविर में कुल 36 शिकायतें दर्ज हुई, जिनमें से अधिकांश का निस्तारण मौके पर ही कर दिया गया। शेष प्रकरणों को संबंधित विभागों को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित किया गया। इसके अलावा 96 पात्र व्यक्तियों को विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं से लाभान्वित किया गया। इस अवसर पर स्वास्थ्य, समाज कल्याण, बाल विकास, वन, राजस्व, आयुर्वेदिक एवं यूनानी, पशुपालन, कृषि, उद्यान सहित कुल 23 विभागों ने अपने अपने स्टॉल लगाकर ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दी। पश्चिमी एशिया में भारतीय दूतावास ने भारतीय नागरिकों से क्षेत्रीय स्थिति को देखते हुए जारी सलाहों का पालन करने का आग्रह किया है। इजराइल स्थित भारतीय दूतावास ने देश में अस्थायी रूप से रह रहे भारतीय नागरिकों से अपनी पिछली सलाह का पालन करने और समय पर सहायता और संचार की सुविधा के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर पंजीकरण करने का अनुरोध किया है। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में दूतावास से कहा गया कि वह स्थिति से प्रभावित भारतीय समुदाय, जिसमें पर्यटक, अल्पकालिक व्यावसायिक आगंतुक और मीडियाकर्मी शामिल हैं, के साथ लगातार संपर्क में हैं। आपात स्थिति में वे 24x हेल्पलाइन नंबर 9725475201 और 9725424283 पर संपर्क कर सकते हैं। ईमेल के जरिए भी संपर्क कर सकते हैं। तेहरान स्थित भारतीय दूतावास ने ईरान में रह रहे भारतीय नागरिकों को विकसित हो रही स्थिति को देखते हुए अत्यधिक सावधानी बरतने की सलाह दी है। भारतीयों से अनावश्यक आवाजाही से बचने, यथासंभव घर के अंदर रहने, स्थिति की जानकारी रहने के लिए समाचारों पर कड़ी नजर रखने और दूतावास से आगे के मार्गदर्शन की प्रतीक्षा करने का आग्रह किया है।
आकाशवाणी के देहरादून केंद्र से प्रसारित किए जा रहे हैं ताजा समाचार। के लिए आप हमारे सोशल मीडिया एक्स व फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड को फॉलो कर सकते हैं। साथ ही ये समाचार हमारे यूट्यूब चैनल आकाशवाणी न्यूज उत्तराखंड पर भी उपलब्ध हैं।
ईरान और इजरायली संघर्ष का असर अब पूरी दुनिया में दिख रहा है। इजरायली और अमेरिकी सैन्य हमले के बीच दिल्ली एयरपोर्ट ने एडवाइजरी जारी की है। एडवाइजरी में कहा गया है कि मध्य पूर्व में उत्पन्न तनाव के कारण पश्चिमी देशों की ओर से जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों की समय सारिणी में बदलाव हो सकते हैं। दिल्ली एयरपोर्ट ने इस बात की जानकारी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स के जरिए दी। एयरपोर्ट के मुताबिक कई उड़ानों के रूट बदले गए हैं और कुछ को डाइवर्ट या कैंसिल कर दिया गया है। पोस्ट के जरिए यात्रियों से अनुरोध किया गया है कि अंतर्राष्ट्रीय यात्रा पर निकलने से पहले यात्री आधिकारिक वेबसाइट www.newdelhi.aar/in पर अपनी यात्रा से जुड़ा अपडेट ले सकते हैं। आगामी चार धाम यात्रा को लेकर हरिद्वार में परिवहन विभाग की ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और ट्रैवल कारोबारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में यात्रा के दौरान आने वाली समस्याओं और व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने पर विस्तार से चर्चा हुई। बैठक में ट्रिप कार्ड और यात्रा रजिस्ट्रेशन काउंटर को 24 घंटे संचालित करने की मांग की गई। साथ ही बाहरी व्यक्तियों की टैक्सियों से स्थानीय संचालकों को होने वाली दिक्कतों का मुद्दा भी सामने आया। ओवरचार्जिंग रोकने, यात्रियों को पहले से डूज एंड डोंट्स की जानकारी देने और पारदर्शी सिस्टम लागू करने पर सहमति बनी। संभागीय परिवहन अधिकारी संदीप सैनी ने बताया कि सभी समस्याओं का प्राथमिकता के आधार पर समाधान किया जाएगा।
आज चारधाम यात्रा 2026 को लेकर हमने हरिद्वार के जितने भी ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के जो व्यक्ति हैं, हमने सभी से यहाँ मीटिंग करी। उनके कुछ प्रॉब्लम थी, उनका निराकरण काफी हद तक हमने कर दिया है, जिसमें हमारी जो ट्रिप कार्ड की जो समस्याएं थी वो ऑनलाइन हमने कस्टमाइज करवा दिया उसको ऑलरेडी। और बाकी उनका डिमांड है कि जो यात्रा रजिस्ट्रेशन का जो काउंटर है वो रात में भी यहाँ 24 घंटे भी चलना चाहिए। उसके लिए हम यात्रा प्रशासन से बात करके आगे इसमें सोल्यूशन।
नैनीताल जिले में भीमताल में शीत मत्स्य अनुसंधान केंद्र में रंगीन मछलियों के बीज उत्पादन की योजना का कार्य पूर्ण किया जा चुका है। इस पहल से अब स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा और मत्स्य पालन को बढ़ावा मिलेगा। शीत मत्स्य अनुसंधान केंद्र भीमताल के वैज्ञानिकों के अनुसार एक्वेरियम के लिए मछलियों को चुनते समय उनके जीवन काल पर ध्यान देना जरूरी है। कुछ मछलियां प्राकृतिक रूप से लंबा जीवन जीती हैं, जबकि कुछ अन्य को सही देखभाल की जरूरत होती है। शीत मत्स्य अनुसंधान केंद्र भीमताल के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉ R.S. पतियाल ने बताया कि अपने खेत में छोटे छोटे पाउंड बनाकर उसमें मछलियों को पालकर बेच सकते हैं और एक नए रोजगार से जुड़ सकते हैं।
यहाँ पर ब्रीडिंग है, सीड प्रोडक्शन है, सब हम लोग करते हैं और काफी विभिन्न प्रोजेक्ट के माध्यम से हम लोगों ने इनका प्रशिक्षण दिया है, तो बहुत से फार्मर्स को कर रहे हैं क्योंकि हमारा पर्वतीय इलाका पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, तो होटलों में, रिजॉर्ट्स में तो लोग रखने लगे हैं।
नैनीताल जिले में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत शैक्षणिक सत्र 2026-27 में निजी विद्यालयों में कमजोर वर्ग के बच्चों के प्रवेश के लिए ऑनलाइन प्रक्रिया की समय सारणी की घोषणा कर दी गई है। जिले के मुख्य शिक्षा अधिकारी गोविंद राम जायसवाल ने बताया कि अभिभावकों द्वारा आगामी 24 मार्च से 2 अप्रैल तक ऑनलाइन पोर्टल rte.online/uk/gov/in पर आवेदन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। आवेदन पत्र की प्रति आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित संबंधित खंड शिक्षाधिकारी कार्यालय में जमा करने की अंतिम तिथि 3 अप्रैल निर्धारित की गई है। विद्यालयों में प्रवेश हेतु लॉटरी प्रक्रिया 17 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। पोर्टल पर प्रवेशित बच्चों की सूची 18 से 30 अप्रैल तक अपलोड की जाएगी। पौड़ी जिले में आयोजित 3 दिवसीय नयार वैली फेस्टिवल का रोमांच और उल्लास के साथ समापन हो गया है, जिसमें विधायक राजकुमार पोरी और जिलाधिकारी स्वाति एस भदौरिया ने विजेताओं और प्रतिभागियों को पुरस्कार प्रदान किए। विधायक ने सभी प्रतिभागियों, आयोजकों, अधिकारियों व स्थानीय नागरिकों का आभार जताते हुए कहा कि साहसिक खेल युवाओं में साहस, अनुशासन और आत्मविश्वास का संचार करते हैं तथा रोजगार के अवसर भी सृजित करते हैं। जिलाधिकारी ने आयोजन को सामूहिक योजना व समन्वय का परिणाम बताते हुए इसे भविष्य में और सुव्यवस्थित और प्रशिक्षण आधारित स्वरूप देने की बात कही। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने 16वीं बटालियन गढ़वाल राइफल्स के स्थापना दिवस पर कहा, सैनिक देश सेवा के बाद सामाजिक क्षेत्र में भी अग्रणी भूमिका निभा रहे हैं। प्रदेश भर में होली मिलन समारोह की धूम। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने काशीपुर में होली मिलन समारोह में शिरकत की। पश्चिमी एशिया में भारतीय दूतावासों ने भारतीय नागरिकों से क्षेत्रीय स्थिति को देखते हुए जारी सलाहों का पालन करने का आग्रह किया है। और चारधाम यात्रा को लेकर हरिद्वार में परिवहन विभाग की ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन और ट्रैवल कारोबारियों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचारों का ये अंक समाप्त हुआ। अगला समाचार बुलेटिन शाम 6:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।